श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। स्वागत आप सबका। आज बहुत ही विशेष दिवस है, भीष्म पंचक प्रारंभ हो रहा है आज से, एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन, इसे भीष्म पंचक कहते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है पुराणों में, विशेष करके पद्म पुराण में इसका बहुत महत्व दिया गया है। कहा गया है कि ये जो व्रत है भीष्म पंचक 5 दिवस का, ये अन्य सारे व्रतों से श्रेष्ठ है। या दूसरे शब्दों में, अगर अन्य कोई भी व्रत आप नहीं कर पाए हैं और इस भीष्म पंचक को कर लेते हैं 5 दिन, तो फिर अन्य सारे व्रतों को करने का लाभ मिल जाता है। कई बार हम लोग व्रत करना प्रारंभ करते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से हम इस व्रत को पूरा नहीं कर पाते या कोई भी व्रत को पूरा नहीं कर पाते, और ऐसे समय में प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो अगर कोई भी व्रत ऐसा रहा हो जो हम पूरा ना कर पाए हों, अगर हम इस भीष्म पंचक 5 दिवस के इस व्रत को पालन कर लेते हैं, तो सारे व्रत जितने भी मान लीजिए गलती से भी टूट गए हों, तो उनका भी लाभ मिल जाता है। वैसे तो भीष्म पंचक बहुत कड़ा व्रत है, पंचक 5 दिन, और भीष्म देव के नाम पर इसको दिया गया है। क्या कारण है भीष्म देव के नाम पर देने का? एक कारण तो ये है कि ये बड़ा भीषण व्रत है, तो जब भीषण व्रत है इसलिए भीष्म पंचक। दूसरा, भीष्म देव के नाम पर है क्योंकि भीष्म देव ने इस व्रत को किया था, पूर्व में कभी इस व्रत को किया था। और इतना ही नहीं, इस व्रत को अलग अलग लोग भी पालन कर चुके हैं, जैसे कई ऋषियों ने, वशिष्ठ मुनि इत्यादि, इन्होंने भी इसका पालन किया हुआ है पूर्व काल में। तो बहुत भीषण और बड़ा ही जल्दी फल देने वाला ये व्रत है। तो कैसे पालन किया जाता है ये भीष्म पंचक 5 दिवस? अलग अलग हैं पुराणों में, इसके कई स्तर दिए गए हैं, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। पहला स्तर तो ये है कि केवल 5 दिनों में पंचगव्य थोड़ा थोड़ा लिया जाता है। जैसे पहले दिवस पर थोड़ा सा गोबर लिया जाता है, दूसरे दिवस पर थोड़ा सा गोमूत्र लिया जाता है, तीसरे दिवस पर थोड़ा सा दूध लिया जाता है, चौथे दिवस पर थोड़े से दही ली जाती है, और 5वें दिवस पर सभी को मिलाकर जितने वो पदार्थ होते हैं 5 पदार्थ, तो उसको लिया जाता है। तो ऐसे ये व्रत किया जाता है और कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, जल ग्रहण नहीं करते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये एक प्रकार है। दूसरा प्रकार अगर वो नहीं कर पाते हैं तो दूसरा प्रकार है कि फल आदि लेकर करें। तो प्रायः बस एक बार दिन में कुछ फल लिए जाते हैं और उससे किया जाता है। अगर वो भी ना हो तो तीसरे तीसरा स्तर दिया है हविष का, तो कुछ बना सकते हैं जो बनाकर खाते हैं, लेकिन वो भी एक ही बार, और उसमें क्या क्या डालना है, कैसे बनाना है, वो सारी विधि दी गई है। मान लीजिए कि जैसे आप एक ही साथ जैसे खिचड़ी बनाते हैं तो सब कुछ एक साथ डालकर उसको बनाना होता है, कुछ चीजें दी गई हैं उन्हीं चीजों को, और फिर उससे व्रत पालन होता है। और कई भक्त अलग अलग तरीके से भी कर लेते हैं, जितना जिसकी क्षमता है। कुछ लोग 5 दिन केवल एकादशी प्रसाद लेते हैं, कुछ लोग 5 दिन केवल एक समय प्रसाद लेते हैं, कुछ लोग केवल फल लेते हैं, इत्यादि। सो इस तरह से ये भीष्म पंचक का व्रत है। आखिरी 5 दिन है चतुर्मास के, आखिरी 5 दिन है कार्तिक महीने के। तो कहना चाहिए कि बस अब आखिरी 5 दिन हैं, तो जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, लगा दीजिए अपने व्रत करने में, और इसका लाभ होता है। साथ ही साथ इन 5 दिनों में भगवान के अलग अलग अंगों पर फूल अर्पण किए जाते हैं, चरणों से प्रारंभ करके उनके मस्तक तक 5 दिन में अलग अलग फूलों को अर्पण किया जाता है। जैसे आज प्रथम दिवस है तो आज कमल का फूल उनके चरणों में अर्पण किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग दिवसों पर अलग अलग फूल भगवान को अर्पण किए जाते हैं इन 5 दिवसों में। और सबसे प्रमुख बात, इन 5 दिवसों में भगवान की कथा का श्रवण ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कृष्ण कथा के पूर्ण नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि नैमिषारण्य में हजारों वर्ष तक यज्ञ करने पर भी ऋषि मुनि क्या कहते हैं सुत गोस्वामी से, कि हमने इतने वर्ष कर लिया यज्ञ और मिला क्या, केवल हमारे मुंह काले हुए उसके धुएं से बस। तो क्यों होता है, क्योंकि कृष्ण कथा नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा अब आप कृष्ण कथा सुनाइए ताकि जो यज्ञ है उसकी पूर्णता हो जाए। तो हर अनुष्ठान की पूर्णता कृष्ण कथा में है, और इसीलिए हमें इन 5 दिवसों पर जितना हो सके कृष्ण कथा सुननी चाहिए, कहनी चाहिए। और विशेष करके भीष्म देव के जीवन की कथा और उस प्रसंग की कथा, जब भीष्म देव अपने देह को त्यागते हुए भगवान की स्तुति करते हैं, जिसको भीष्म स्तुति कहा गया है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय में, जहां भीष्म देव का देह त्याग है, तो उस 9वें अध्याय में अंतिम विभाग है भीष्म देव की स्तुति। तो आज इन विषय पर, भीष्म देव के विषय पर, भीष्म देव की स्तुतियों पर आज से अब अगले 5-4 दिन तक, अर्थात जब तक भीष्म पंचक है, रोज ये कथा करेंगे, ताकि हम लोग भीष्म देव की कृपा को प्राप्त कर सकें, उस भीषण व्रत को कर सकें, दृढ़ता को ला सकें जो भीष्म देव के अंदर थी। और केवल दृढ़ता ही नहीं, वो भक्ति, वो समर्पण। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं आज के इस शुभ अवसर पर, और प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, भीष्म देव से, कि वे हमें शक्ति प्रदान करें कि हम इस कथा को कह सकें। और आप सबके लिए भी प्रार्थना है कि आप सबको इसका पूर्ण पूर्ण लाभ मिले। तो भीष्म देव, इनका जीवन और उनकी शिक्षाएं, तो भीष्म देव के विषय में अगर कहना चाहें तो एक विभाग है उनका जीवन, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरा विभाग है जो शिक्षाएं उन्होंने दी जिस समय वो बाणों की शैया पर थे, उपदेश जो उन्होंने दिए युधिष्ठिर महाराज को, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और तीसरा जो उन्होंने प्रार्थनाएं अंत में भगवान श्री कृष्ण को अर्पण की। तो भीष्म देव का जीवन क्या है? अगर भीष्म देव का जीवन देखा जाए तो भीष्म देव का जीवन सदैव हमें बहुत सी चीजें सिखाता है। सबसे पहली चीज दृढ़ता। ऐसी चीजें हम सीख सकते हैं, वैसे तो उनके जीवन से बहुत कुछ है सीखने के लिए, माता पिता के प्रति समर्पण इत्यादि। हम लोग कुछ गुणों को लेते हैं जो हम भक्ति में इसका उपयोग कर सकते हैं। सो पहला गुण देखते हैं कि दृढ़ता। ये जो जीवन था भीष्म का पूरा, ये केवल भीष्म जैसे दृढ़ व्यक्ति ही जी सकते थे। प्रारंभ से जीवन में उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा, कष्टों का सामना करना पड़ा, कई स्थानों पर अपमान का सामना करना पड़ा, और अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखने के लिए उन्हें कई अन्याय, कई अधर्म को सहना पड़ा। लेकिन उस सब को सहते हुए उन्होंने उस दृढ़ता का पालन किया। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि भीष्म देव को महाजन क्यों कहा जाए? अरे महाजन तो वो होते हैं जो सदैव कृष्ण के चरणों में बैठे रहें, कृष्ण की सेवा करें, और ये एक भीष्म हैं जो कृष्ण के विरोधियों के साथ हैं, अधर्म का साथ दिया। एक तरफ देखा जाए तो प्रारंभ से उन्होंने अधर्म का साथ दे दिया। धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, ये सब, और साथ साथ जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, भीष्मदेव वहीं बैठे थे, उसको देख रहे थे, और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, उठकर नहीं गए वहां से। विदुर ने तो कर दिया था विरोध। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो भीष्म अधर्म का साथ देते आए, और फिर उसके बाद भी जब युद्ध हुआ तो भीष्म ने ये नहीं सोचा कि मैं युद्ध ना करूं, जैसे बलराम जी ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, विदुर जी चले गए तीर्थ यात्रा पर, लेकिन भीष्म रहे। और केवल युद्ध ही नहीं किया भीष्म ने, प्रमुख सेनापति बने, प्रण लिया कि रोज 10,000 सैनिकों को मार दूंगा मैं शत्रु पक्ष के। तो आप सोचिए, ये अगर हम इनका जीवन पूरा देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे विरोधी हैं भगवान के, लेकिन दूसरी ओर हम इन्हें महाजन कहते हैं, महान भक्त मानते हैं। भक्ति इनके जीवन का सार रहा है, सीखने लायक है इनसे भक्ति। तो कैसे ये दो विरोधाभास चीजें हो सकती हैं? तो भीष्म का जो जीवन है, ये भगवान कृष्ण के द्वारा इस्तेमाल किया गया एक अनमोल निमित्त है। ऐसा निमित्त जो हमें संदेश देता है। सो कृष्ण ने उन्हें निमित्त बनाया अपना, किस लिए? ताकि हम सबको शिक्षा दे सके। क्या शिक्षा देना चाहते हैं इनके जीवन से? क्या ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हम सबको भी अधर्म करना चाहिए? क्या ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें भी तीर चलाने चाहिए? क्या ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें अधर्मियों का साथ देना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए अगर अन्याय हो, अधर्म हो? क्या शिक्षा देना चाहते हैं भगवान? नहीं, भगवान इनके द्वारा हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि चाहे आप कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, आप कितने ही प्रकांड पंडित क्यों ना हो, आप कितनी ही ऊंची स्थिति पर, ऊंचे पद पर क्यों ना हो, अगर आप भगवान की तरफ नहीं हैं, तो आपकी पराजय निश्चित है। ये संदेश है, इसलिए भगवान ने इस्तेमाल किया भीष्म का, और भीष्म ने स्वीकार किया। ये भीष्म का समर्पण है। भीष्म ने विरोध नहीं किया, कि हे कृष्ण आप मुझे कैसे अपमानजनक चीजों में डाल रहे हैं, इतिहास क्या कहेगा, आने वाले लोग मेरे विषय में गलत बातें कहेंगे। कोई चिंता नहीं की भीष्म ने। भीष्म जानते थे कि वो मरने जा रहे हैं, वे जानते थे कि वो पराजित होंगे, लेकिन फिर भी ये उनकी निस्वार्थ सेवा थी जो उन्होंने कृष्ण के प्रति की। वे ये भी जानते थे कि जो भी इस विषय में सुनेगा, मेरे विषय में प्रामाणिक आचार्यों से ना सुनकर अगर वैसे कोई मेरे विषय में सुनेगा तो वो क्या सोचेगा, वो यही सोचेगा कि भीष्म ने गलत किया, भीष्म की गलत इच्छाएं थी, अधर्मी थे, विरोधी थे। भीष्म ये जानते थे कि जो भी मेरे विषय में सुनेगा यही मानेगा, लेकिन भीष्म का समर्पण था। क्या समर्पण था? उन्होंने चिंता नहीं की, उन्होंने ये चिंता की कि कृष्ण क्या चाहते हैं। और इसलिए आज, और आज ही नहीं, हजारों वर्षों से और हजारों वर्षों तक, हजारों लाखों वर्षों तक भीष्म का नाम महान भक्तों की सूची में लिया जाएगा। तो क्या क्या महत्व क्या था उनकी भक्ति का, कैसा समर्पण था उनका? उनका समर्पण देखें तो उनका समर्पण था पूर्ण समर्पण, अपने मान प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान, अपनी सुविधाओं की कोई चिंता नहीं, एक ही चिंता कि कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण को प्रसन्न करना है। और ये चिंता करते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताया। जब अधर्म का भी साथ दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कृष्ण की इच्छा है कि मैं ऐसे रहूं इनके साथ ताकि युद्ध हो अंततः और सब जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो समाप्त हो सके। तो ये भीष्म का समर्पण है। भीष्म ने बहुत प्रेम किया पांडवों से, लेकिन पांडवों को कष्ट में देखा, पांडवों को जलाने का प्रयास करते हुए देखा, जहर देते हुए प्रयास, मारने का प्रयास करते हुए देखा, लेकिन सब सहन किया कृष्ण की सेवा के लिए। ये भीष्म का समर्पण है। भीष्म हमें सिखलाते हैं कि जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना आए, कितने ही दुख, कितने ही तकलीफें क्यों ना आए, कितने भी द्वंद्वों से क्यों ना गुजरना पड़े, हमें कृष्ण भक्ति को कभी त्यागना नहीं चाहिए, हमें कृष्ण की सेवा और समर्पण को त्यागना नहीं चाहिए। ये उनकी सेवा थी कृष्ण के प्रति कि ऐसे स्थान पर रहकर उन लोगों को शुद्ध करें जो अधर्मी हैं, या फिर उन लोगों को प्रेरित करें ताकि वे लोग युद्ध कर सकें। क्योंकि अगर भीष्म नहीं होते तो दुर्योधन कभी युद्ध नहीं करते, और इसका प्रमाण भगवद गीता के पहले अध्याय में मिलता है। और उससे पहले भी जब योजना प्रारंभ हुई, कार्तिक पूर्णिमा के दिवस पर ये सारी सेनाएं ये कुरुक्षेत्र की ओर चली थी युद्ध के लिए। युद्ध तो गीता जयंती के दिन प्रारंभ हुआ, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन सारी सेनाएं चल दी। और फिर जब प्रमुख सेनापति बनाने की बात आई तो कर्ण ने कह दिया कि अगर भीष्म ये प्रमुख सेनापति बनेंगे तो मैं इनके अधीन रहकर युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन, जो अपने मित्र कर्ण से बहुत प्रेम करता था, या कहना चाहिए कि ये सोचता था कि कर्ण है जो अर्जुन को हरा सकता है और इसके कारण मैं जीत जाऊंगा, जब उसने ये सुना कि भीष्म के रहते कर्ण युद्ध नहीं करेगा, तो क्या दुर्योधन ने ये घोषणा की कि ठीक है भीष्म प्रमुख सेनापति नहीं बनेंगे? बिल्कुल नहीं। दुर्योधन ने यही घोषणा की कि प्रमुख सेनापति भीष्म होंगे। तो क्या कारण था कि कर्ण जैसे मित्र को भी अगर उसने कह दिया कि मैं नहीं करूंगा तो कोई बात नहीं, तुम नहीं करो, लेकिन बनेंगे भीष्म ही। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जानता था कि अगर मैं विजयी होऊंगा तो केवल भीष्म के कारण। और ये कारण था कि कृष्ण ने आज तक अब तक भीष्म को वहीं रखा था, दुर्योधन की तरफ रखा था, ताकि जब युद्ध हो तो दुर्योधन घबराए नहीं युद्ध करने से। श्री कृष्ण की गुणगान भीष्म देव ने बारंबार किया। भीष्म देव बहुत अच्छी तरह जानते थे ये युद्ध में हारूंगा, मेरी पराजय होगी, मेरी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण उस तरफ है, कृष्ण रक्षा कर रहे हैं। तो अगर जीवन में पूरे भीष्म के जीवन में देखें तो सारे जीवन का सार है कृष्ण भक्ति। राजसूय यज्ञ में जहां भी अवसर मिला भीष्म को, राजसूय यज्ञ में उन्होंने गुणगान किया श्री कृष्ण का। जब श्री कृष्ण की अग्र पूजा का विषय आया तो भीष्म ने बड़ी प्रसन्नता से सभी के सामने, सारी पृथ्वी के राजा थे, सारे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि आए हुए थे। वो राजसूय यज्ञ कोई साधारण राजसूय यज्ञ नहीं था युधिष्ठिर का, वो ऐसा यज्ञ था कि जिसमें पूरे ब्रह्मांड से लोग आए हुए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे। नारद मुनि ने यह प्रश्न किया था युधिष्ठिर महाराज से कि अरे इतने सारे ऋषि, इतने ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजा आए हैं, क्यों आए हैं जानते हो? हमने कहा हाँ, कृष्ण को देखने आए हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपको देखने आए हैं कि आप कौन है जिनके द्वार पर खड़े होकर कृष्ण चरण धो रहे हैं आने वालों के, वो व्यक्ति कितना महान होगा। तो सारे ब्रह्मांड से आए। और फिर भीष्म देव ने सबके सामने कृष्ण का गुणगान किया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ये, कई अवतार ले चुके हैं, उनके कई अवतारों का वर्णन किया, उनकी ब्रज लीलाओं का वर्णन किया, कैसे उन्होंने बाल्यकाल में इतने सारे असुरों को मारा, गोपियों को आनंद दिया, ये सारा वर्णन भीष्म देव ने किया। और फिर युद्ध के समय भी जब बाणों की शैया पर विगिरने वाले थे, उस समय भी उन्होंने अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। ये वो समय था जब एक दिन पहले भीष्म ने बड़ा ही भीषण युद्ध किया, अर्जुन भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। श्री कृष्ण बारंबार अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन मारो भीष्म को, अर्जुन मारो, तुम्हें प्रेम है, तुम जानबूझकर नहीं मार रहे हो। और अर्जुन कह रहे नहीं, मैं अपनी पूरी क्षमता लगा रहा हूं। और अंत में क्रोधित होकर स्वयं श्री कृष्ण नीचे उतर पड़े और उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया और भागे भीष्म की ओर। भीष्म ने क्या किया? भीष्म ने दोनों हाथ जोड़ दिए, अपने मस्तक पर लगाए और फिर कहा दासोस्मी, आप मुझे मारना चाहते हैं, आज मैं इच्छा करता हूं कि मैं मेरे मुझे मृत्यु प्राप्त हो, मुझे वरदान है इच्छा मृत्यु का, आज तक मैंने इच्छा नहीं की लेकिन आज इच्छा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं मुझे मारना। दासोस, कोई तीर नहीं चलाया, कोई विरोध नहीं किया भीष्म ने, कर सकते थे, अगर सही में विरोधी होते, सही में अधर्मी होते तो एक तीर चलाते, कृष्ण के हाथ में तो केवल पहिया था, कृष्ण को मार सकते थे। प्रदर्शन किया अपने समर्पण का। और फिर अगले दिन, दसवें दिन, जब भीष्म गिरे हैं, तीर चला रहे, शिखंडी को सामने रखा हुआ है अर्जुन ने रथ पर, और उसके पीछे से तीर चला रहे हैं, पहला तीर जब आकर लगा, छाती में घुसा, क्या निकला, क्या मुंह से निकला भीष्म देव के? हे कृष्ण। और उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा, द्रोण देखिए आचार्य, ये आपके शिष्य का तीर है, मेरी छाती कोई और साधारण योद्धा का तीर नहीं भेद सकता। तो उन्होंने, और उसके बाद एक के बाद एक तीर, एक के बाद एक तीर, और हर तीर पर भीष्म देव के मुख से हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, ये भक्ति है। ऐसे क्षण में उन्होंने कृष्ण का स्मरण किया और फिर बाणों की शैया पर गिर पड़े हैं भीष्म। जैसे ही बाणों की शैया पर गिरे, युद्ध रुक गया। दोपहर का समय था, सारा युद्ध रुक गया, क्योंकि भीष्म, जिन्होंने चार जेनरेशंस देख ली हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और बहुत महान योद्धा हैं, उनके आदर में दोनों तरफ से युद्ध रुक गया और सभी लोग भीष्म के चारों ओर आकर खड़े हो गए। भीष्म ने सबसे कहा कि आप जाइए, क्योंकि आज भीष्म को लग रहा था कि अब मैंने दुर्योधन के नमक का, दुर्योधन के धन का ऋण उतार दिया। भीष्मदेव कहते हैं, जब युधिष्ठिर गए युद्ध के पहले उनके पास, कि उन्होंने कहा कि मैंने धन लिया है दुर्योधन से, इसलिए मैं दास हूं उसका, लेकिन आज अपने अपने खून को बहाकर उन्होंने वो ऋण चुका दिया और अब ऋण मुक्त हो गए। और उन्होंने करीब 53 दिवस तक बाणों की शैया पर ही वो पड़े रहे, इंतजार कर रहे थे। इधर युद्ध समाप्त हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और युधिष्ठिर इतने दुखी थे कि वो मानो अपने प्राण दे देना चाहते। सबने समझाया, कृष्ण ने भी समझाया, अंततः कृष्ण भीष्म के पास लेकर आए। अब भीष्म का क्या कर्तव्य है? भीष्म को तो केवल शुद्ध भक्ति की बातें करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं। भीष्म ने उन्हें राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, सारे धर्मों के बारे में वर्णन किया। क्या कारण था, क्यों भीष्म इस समय, ऐसे समय में जहां व्यक्ति को केवल आवश्यकता थी, इस समय तो केवल आवश्यकता थी भक्ति का विषय सुनने की, तो क्यों कृष्ण ने, भीष्म देव ने ये वर्णन किया? इतने सारे राजधर्म का वर्णन कर रहे हैं, स्त्री धर्म का वर्णन कर रहे हैं, समाज के धर्म का वर्णन कर रहे हैं, मोक्ष धर्म का वर्णन कर रहे हैं, भागवत धर्म का वर्णन किया उन्होंने, तो किस लिए? क्योंकि वो जानते थे कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सेवा दी है राज्य करने की, और मेरा कर्तव्य है मैं उसकी सेवा में मदद करूं। मेरा कर्तव्य उसे सेवा से विमुख करना नहीं है, क्योंकि ये सेवा कृष्ण ने दी है, इसीलिए मैं उसे समझाऊंगा कि ये सेवा और कैसे अच्छी की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने राजधर्म का ज्ञान दिया। तो भीष्म देव ज्ञान दे रहे हैं बाणों की शैया से, और उन्होंने मनुष्यों के लिए योग्यताएं दी कि अगर अपने आप को मानव कहते हो, मनुष्य कहते हो, तो ये योग्यताएं होनी चाहिए एक एक सभ्य पुरुष में, एक सभ्य मानव में। और क्या योग्यताएं दी? उन्होंने कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, कई योग्यताएं उन्होंने दी। तो पहली योग्यता वो दे रहे हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। वो ये भी बताने वाले हैं कि क्रोध को कैसे रोकना है। दूसरा उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि जितना भी धन है हर मनुष्य के, सभ्य मनुष्यों के लिए उपदेश, उनके लिए योग्यताएं दे रहे हैं, तो जितना भी धन है उसको बराबर बांट देना चाहिए। चौथा क्षमा, इस गुण को जरूर उत्पन्न करना चाहिए अपने अंदर। पांचवा, वे कहते हैं कि समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए केवल अपनी विवाहिता पत्नी के साथ ही संबंध रखना चाहिए और संतान उत्पन्न करनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि मन को बहुत शुद्ध रखना चाहिए और शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं जो भक्ति में भी हमें मदद करती। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है ये बाहरी सामाजिक नियम है, नहीं, ये भक्ति में भी बहुत मदद करता है। आगे भीष्मदेव कहते हैं कि किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। ये सभी मनुष्यों के लिए है, सभी सभ्य मानवों के लिए है, सबको समान देखना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि जो भी आपके अधीन है, आपके सेवक है, आपके अन्य लोग हैं, उन सबको बहुत सहयोग करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये भीष्म देव ने मनुष्यों के लिए कि अगर आप मनुष्य हैं तो ये उपदेश दिए। और इसके अलावा भीष्म देव बहुत सुंदर अब उपदेश युधिष्ठिर को दे रहे हैं राजधर्म की। वैसे तो देखा जाए तो ये केवल राजधर्म का बात लगती है कि भीष्मदेव एक राजा के लिए नियम दे रहे हैं, लेकिन अगर हम इन नियमों को बड़े ध्यान से देखें तो भक्ति की दृष्टि से ये सारे नियम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि राजधर्म मतलब एक राजा जो अन्यों की अगुवाई कर रहा है, नेता बना हुआ। और एक दृष्टि से देखा जाए तो हर कृष्ण भक्त ये अन्यों का नेता है, अन्यों की अगुवाई करनी चाहिए हर कृष्ण भक्त को। क्यों? क्योंकि लोग उनको देखकर सीखें कृष्ण की ओर जाना। तो एक दृष्टि से ये राजधर्म, वैसे अगर भीष्मदेव ने दिया राजाओं के लिए, लेकिन हम इसके कुछ जो राजधर्म उन्होंने सिखलाए उसके कुछ ज्ञान को अगर हम लें तो अपने जीवन में हम इसे उतार सकते हैं और सही दृष्टि में भक्त बन सकते हैं। तो क्या सिखलाया उन्होंने? भीष्मदेव ने बतलाया कि एक राजा को बड़ा अच्छा प्रशिक्षण होना चाहिए। किस चीज का प्रशिक्षण होना चाहिए? कि वो उदार बन सके, केवल लोगों से टैक्स लेता ना रहे। राजा का कार्य है कर इकट्ठा करना, लेकिन केवल कर लेता नहीं रहे, उसे देना भी सीखना चाहिए, उदार होना चाहिए उसका हृदय। तो भक्ति मार्ग में हर एक भक्त को ये सीखना चाहिए कि हमें केवल लेना नहीं है समाज से, हमें देना सीखना चाहिए, हमारा ऐसा प्रशिक्षण होना चाहिए। क्योंकि ये प्रशिक्षण हमारे अंदर निस्वार्थ भावना का गुण उत्पन्न कराएगा, और भक्त के लिए निस्वार्थ भावना अति आवश्यक है। तो इसीलिए ये जो भीष्म देव के द्वारा दिया गया ये पहला ज्ञान, अभी राजधर्म बहुत सारे हैं, हमने कुछ उनमें से हम लोग चर्चा करेंगे जो भक्ति से संबंधित है। तो ये जान लीजिए कि हमें समाज से केवल लेते नहीं रहना है। एक भक्त, एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी, एक गृहस्थ, सारे भक्त समाज से कुछ ना कुछ लेते हैं, अपने जीवन चलाने के लिए, प्रचार के लिए, मंदिर चलाने के लिए बहुत कुछ लिया जाता है। और इसीलिए हमारा प्रशिक्षण क्या होना चाहिए? हमारा प्रशिक्षण होना चाहिए कि हम कैसे समाज को दें, ये प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। और फिर साथ ही साथ वे कहते हैं कि एक और प्रशिक्षण होना भी जरूरी है, और वो क्या है कि एक राजा को बहुत से यज्ञ करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। किस लिए? प्रजा की समृद्धि के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने, अपने लिए नहीं, अपने स्वर्ग जाने के लिए नहीं, अपना धन बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, यज्ञ होना चाहिए अन्यों के संपत्ति या अन्यों के समृद्धि के लिए, जितने भी उनके अधीन लोग हैं। तो ये एक भक्त को बहुत महत्वपूर्ण है सीखना कि हम लोग जब प्रचार करते हैं तो हमारे हमसे कुछ लोग जुड़ जाते हैं। सो एक भक्त को यज्ञ करना सीखना चाहिए, यज्ञ अर्थात तपस्या या कुछ देने की भावना। यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ का अर्थ एक त्याग भी होता है। तो एक भक्त में त्याग की भावना होनी चाहिए ताकि दूसरों का लाभ हो सके, अर्थात तपस्या अपने लिए, सुविधा दूसरों के लिए, ये मूल मंत्र होना चाहिए जीवन का एक भक्त के लिए। तो ऐसे दूसरों के दूसरों को आनंद दे, दूसरों की सुविधा का ख्याल रखे। लेकिन किस लिए? राजा का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य जो भीष्मदेव बताते हैं कि अपनी प्रजा को मोक्ष की ओर ले जाना। तो जब हम भगवान की भक्ति करें तो हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि अगर कुछ लोग हमसे जुड़े हैं तो कैसे हम उन्हें, भले हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हम कोई बहुत बड़े प्रचारक नहीं है, हम बहुत बड़े सन्यासी नहीं है, हमारे हजारों अनुयायी नहीं है, कोई बात नहीं, एक व्यक्ति भी अगर, केवल एक व्यक्ति अगर आपके साथ है, आप पर आश्रित है, आपसे कुछ प्रेरणा प्राप्त कर रहा है, उसकी मोक्ष का मार्ग खोलने का प्रयास कीजिए, उसको भक्ति प्रदान कीजिए। ये राजा का कर्तव्य, ये भक्त का कर्तव्य है कि अपने लिए नहीं वो दूसरों के लिए जिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे कोई चिंता नहीं है अपने मोक्ष की, अपनी मुक्ति की, लेकिन मैं इन लोगों के लिए चिंतित हूं। और राजधर्म बताते हुए भीष्मदेव कहते हैं कि जो पिता होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो राजा होते हैं, इन्हें गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर वे अपने प्रजा को आगे ले जा रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चीजों से दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बाहर गैर जिम्मेदाराना कार्य नहीं करना चाहिए। तो अगर आप पिता हैं, अगर आप गुरु हैं, अगर आप राजा हैं, तो गुरु का अर्थ क्या है? अगर आप किसी को भी भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, हर वो व्यक्ति गुरु है। तो हमें बहुत जिम्मेदारी का जीवन जीना चाहिए। कृष्ण भक्ति ये बड़ी जिम्मेदारी की का जीवन है। कृष्ण भक्ति में बहुत सावधान रहना होता है। क्या सावधानी? कि कहीं हमारे कारण कोई भी एक भक्त भक्ति से दूर ना चला जाए, गलत मार्ग पर ना चला जाए, पथ भ्रष्ट ना हो जाए, हम उसे सही मार्ग पर भक्ति में ले आगे बढ़ा सके, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो भीष्मदेव कहते हैं कि गैर जिम्मेदाराना नहीं, मैं जिम्मेदार बनिए। तो भीष्मदेव सिखला रहे हैं कि हम सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कृष्ण भक्ति में। फिर वो आगे कहते हैं कि जो योग्य ब्राह्मण होते हैं वो किस लिए हैं? वो राजा को निर्देश देने के लिए। तो राजा को योग्य ब्राह्मणों से निर्देश लेने चाहिए। भक्ति में हर भक्त को अपने वरिष्ठों से, या कहना चाहिए हर एक दूसरे भक्त से, हमें ज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए। विशेष करके हमारे वरिष्ठों से हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने का। क्योंकि राजा है लेकिन फिर भी उनको निर्देश ब्राह्मणों से लेना होता है, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हम प्रभु कहते हैं, भगवान विभु कहलाते हैं। विभु का अर्थ क्या है? जिनके पास वैभव है, जो वैभव को प्रदर्शित करते हैं वो विभु है। और प्रभु जो प्रभाव करते हैं उन्हें प्रभु कहते हैं। तो हर व्यक्ति दूसरे पर प्रभाव डालना चाहता है ना? तो इस जगत में हर व्यक्ति प्रभु बनना चाहता है, दास कोई नहीं बनना चाहता। तो प्रभु क्या है? जो प्रभाव डालते हैं। तो हम सब अपने, चाहे आप घर में हो तो आप परिवार वालों के प्रभु बनना चाहते हैं, उन पर प्रभाव डालना चाहते हैं। आप मंदिर में हो तो मंदिर में आने वालों पर आप प्रभाव डालना चाहते हैं। आप अगर किसी ऑफिस में हैं तो ऑफिस वालों पर प्रभाव डालना चाहते हैं। एक दृष्टि से हर कोई प्रभु बनना चाहता है। भक्त का कार्य क्या है? भक्त का कार्य है कि हम अन्यों से प्रभावित हों, अपने वरिष्ठों से प्रभावित हों, इसीलिए उनको प्रभु कहा जाता है। हम स्वयं को प्रभु नहीं कहते लेकिन हम अन्यों को प्रभु कहते हैं, क्योंकि आपकी भक्ति, आपके ज्ञान, आपके अनुभव, आपके साक्षात्कार से हम प्रभावित होना चाहते हैं, हमारा जीवन प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे प्रभु हैं। तो जो योग्य हैं उनसे हमें निर्देश लेने चाहिए। आगे भीष्मदेव कहते हैं कि अगर राजा पुण्यवान है, अगर राजा धार्मिक है, अगर राजा शक्तिशाली है और उदार है, तो जितने भी प्रजा हैं वो स्वतः उसका पालन करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भक्ति में है कि अगर हम शुद्ध हैं, अगर हम धर्म के पथ पर हैं, अगर हमारे अंदर बल है, शक्ति है अपनी कमियों को देखने की और दूसरों के आदेश के पालन की, इसके लिए भी शक्ति चाहिए, और अगर हम उदार हैं, अगर हम केवल देना चाहते हैं, तो लोग स्वतः आपका पालन करेंगे। श्रील प्रभुपाद का उदाहरण परफेक्ट है। श्रील प्रभुपाद शुद्ध है, धर्म के पथ पर है, केवल देना चाहते हैं और लोगों ने उनका पालन किया। और फिर भीष्मदेव कहते हैं कि ऐसे राजा को आलसी नहीं होना चाहिए, जो जो केवल प्रजा है उससे कुछ धन लेकर बस जीता है, ऐश करता है, लेकिन उसको हमेशा सावधान रहना चाहिए और उसको जो डकैत है, जो चोर है, जो पापी है, उनको मारने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में हमें ऐसा राजा बनना है। कोई कह सकते हैं कि प्रभु जी आप कह रहे हैं कि राजा बनना है, नेता बनना है, हम तो एक व्यक्ति को भी ज्ञान नहीं देते हैं, इसलिए हम राजा नहीं है, हमारे लिए ज्ञान नहीं है। अगर आप एक व्यक्ति को भी नहीं दे रहे हैं तो आज से देना शुरू कीजिए, और नहीं भी दे रहे हैं तो ये जान लीजिए कि कम से कम भक्ति में हमें इंद्रियों का राजा बनना है, अपने मन और इंद्रियों को जीतना है। इसीलिए सारे उपदेश हमारे लिए दिए हैं, हम सब के लिए हैं, हम किसी भी अवस्था में क्यों ना। तो इसीलिए भीष्मदेव कहते हैं कि एक राजा को आलसी नहीं होना चाहिए, बस प्रजा से पैसे लिए और आराम ऐश कर रहे हैं, लेकिन अगर जो कष्ट दे रहे हैं, जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, जो डाक डकैत हैं, पापी हैं, मारना चाहिए उन्हें। इसी तरह एक भक्त को होना चाहिए, सुविधाओं में पढ़कर कृष्ण को भूल नहीं जाना चाहिए कि हमें सुविधा मिल रही है, हमें लोग हार पहना रहे हैं, हमें खाने पीने के लिए मिल रहा है, कोई चिंता कर रहा नहीं। बहुत सावधान रहना चाहिए, किसके लिए, उन चोर लुटेरों को मारिए जो आपके हृदय में है। सॉरी, वो चोर लुटेरे जो आपकी भक्ति को चुरा कर ले जा रहे हैं, उनको मारने के लिए आप हमेशा सावधान रहिए। अन्य चोर लुटेरों के प्रति तो रहिए ही कि कोई आपको भक्ति के पथ से दूर ना ले जाए, कोई आपको गलत ज्ञान ना दे दे, लेकिन साथ साथ जो यहां अंदर चोर लुटेरे बैठे हैं, डकैत बैठे हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। कौन डकैती करता है? हमारे लिए डकैत कौन है? हमारे लिए डकैत है आसक्ति। ये जो आसक्ति भौतिक चीजों में होती है, ये सबसे बड़ी डकैत है। क्यों? क्योंकि हमें कृष्ण से दूर ले जाती, छीन कर हमारा धन भक्ति, उसको ऐसे डाका डालकर ले जाती है ये आसक्ति। क्यों ले जाती है? क्योंकि जो आसक्ति कृष्ण में है होनी चाहिए, जो आसक्ति कृष्ण के चरणों में होनी चाहिए, वो हम अन्य लोगों में लगा देते हैं, अन्य स्थानों में, अन्य वस्तुओं में लगा देते हैं। इसीलिए आसक्ति डकैत है, चोर है, तो हमें उनको मारने के लिए तैयार होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो एक भक्त को सदैव सावधान रहना चाहिए, जहां ये डाकू, जहां ये चोर दिखाई दे, तुरंत मार दीजिए, बढ़ने मत दीजिए। क्योंकि अगर ये डाकुओं की संख्या बढ़ गई, उनका दल बढ़ गया, तो फिर मारना बड़ा मुश्किल होगा। एक को मारेंगे दूसरा आ जाएगा, जैसे भगवान राम ने एक रावण का सर काटा, दूसरा आ गया, इसलिए मार डालिए, खत्म कीजिए इसको। ये ऐसी प्रवृत्ति जो हमें कृष्ण से दूर ले जाए, ऐसी प्रवृत्ति जो हमें विश्वास दिलाए कि ये जगत में भक्ति के नाम पर आनंद लेते रहो, जो हमें ये विश्वास दिलाए कि भक्ति क्या है, भक्ति है कि थोड़ा समय कृष्ण के पास जाना है और बाकी समय आनंद लेना है। ये तुम्हारा जीवन तपस्या के लिए नहीं बना। ऐसे ऐसे सब डाकुओं को मारिए जो हमें ये सिखलाएं कि धन कमाना, धन से आसक्ति, परिवार से आसक्ति, ये जीवन का सार है। जो ये डाकू सिखला रहा है, मार डालिए उस डाकू को। इसका अर्थ ये नहीं है कि परिवार को छोड़ दीजिए, धन को छोड़ दीजिए। आसक्ति, उस आसक्ति को निकाल दीजिए और फिर देखिए कितना सुंदर होगा ये जगत। इस जगत में अगर एक वस्तु जो इस जगत को बड़ा ही विकृत रूप देती है तो वो है इस जगत से आसक्ति। जिनकी आसक्ति नहीं है इस जगत में, उनके लिए ये जगत और आध्यात्मिक जगत एक समान है, क्योंकि संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ऐसा जीवन एक भक्त का होना चाहिए। आगे बहुत सुंदर उपदेश और भी भीष्म देव ने राजा के लिए, राज धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, भागवत धर्म के दिए हैं, और इन उपदेशों को भी हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो कल आगे इन उपदेशों की हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।